शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बताया लौकिक में भी एडॉप्शन चलता है और संगम युग पर बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को एडॉप्ट किया है और ये एडॉप्टेशन का सिस्टम सतयुग में नहीं होता है। बाबा ने कहा बाप ने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कही कि कोई बाहर वाला आता है कहता है कि गुरुजी से मिलना है तो बाबा ने कहा उनको बोलो देखो बोर्ड पे लिखा हुआ बाहर क्या लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया क्योंकि तुम एडॉप्टेड बच्चे हो ये ईश्वरीय परिवार है तो उनको बताओ कि ये परिवार है। फिर परिवार के लिए बाबा ने क्या बताया कि आपस में कितना प्यार से रहना चाहिए। आज बाबा ने बहुत प्यार से ये बार बार ध्यान खिंचवाया है कि तुम ईश्वरीय परिवार के हो तो तुम्हें आपस में बहुत प्यार से रहना है। लून पानी नहीं बनना, लून पानी में थोड़ा कड़वा होता है ना तो लून पानी नहीं बनना है। खीर सागर की तरह जैसे खीर सागर है तो ऐसे रहना है। तो बाबा ने बहुत बार ये ध्यान खिंचवाया है। फिर बाबा ने कहा देखो आज की सृष्टि में क्या क्या हालत हो रहे हैं, आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं नेचुरल क्लैमिटीज होती क्या नहीं हो रहा है लेकिन ये सब जो है तुम बच्चे जानते हो ड्रामा का ज्ञान है और तुम कहेंगे नथिंग न्यू और दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये परिवर्तन के लिए हो रहा है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 7 मार्च 2025। मीठे बच्चे ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है इसमें जो भी सीन पास हुए वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगा इसलिए सदा निश्चिंत रहो। मीठे बच्चे ये अनादि बना बनाया हुआ ड्रामा है इसमें जो भी सीन पास्ट हुई वह कल्प के बाद रिपीट होगी इसलिए निश्चिंत रहो। आज का प्रश्न है ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है उसकी निशानियां क्या है। ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है उसकी निशानियां क्या है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। उत्तर है दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं कितनी घमसान हो रही है। विश्व के न्यूज में देखो चारों ही तरफ घमसान ही घमसान है तो कितनी घमसान हो रही है। चोर भी कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। जब बरसात की जरूरत है तो नहीं आएगी और जब जरूरत नहीं है तो आती है तो सारा नुकसान करके चली जाती है। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। पहले भी हुआ था अभी भी हो रहा है ये होगा तब तो परिवर्तन होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर क्या हो रहा है ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम योगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वह सब हैं कलयुगी, रहे एक ही स्थान पर रहे हैं, एक ही परिवार में संगम युगी है और एक ही परिवार में कलयुगी है। इस दुनिया में संगम युगी भी है और कलयुगी भी है, बाकी सभी है कलयुगी। इस दुनिया में इस समय अनेक मत मतांतर हैं, तुम बच्चों की तो एक ही मत है, एक ही बाबा एक ही श्रीमत देते हैं, बाबा की एक श्रीमत पर चलते हैं, तुम बच्चों के एक ही मत हैं, जो एक मत भगवान की ही मिलते हैं। वे लोग तो भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वे समझते हैं ये सब रास्ते भगवान के मिलने के। बहुत पूजा करते हैं कि भगवान मिल जाएगा, बहुत कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बाबा के बच्चों ने भी कईयों ने बहुत भक्ति पूजा किया कि बाबा भगवान मिलेगा, तो कईयों ने तो बिल्कुल ही नहीं किया है, उनको तो बाबा सहज रीति से मिल ही गए हैं। तो बाबा कहते हैं जो एक मत भगवान की मिलती है वह लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो भी करते हैं वह समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि भक्ति कब शुरू होती है और कब तक चलती है, कब शुरू हुई कब तक चलेगी ये भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते कि भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। ये भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। अब वो तो क्या समझ लेते भक्ति वाले, किसी जानवर को देखेंगे कहेंगे इसमें भगवान है, किसी को देखेंगे ये भगवान है, वो समझते किसी भी रूप में मिलेगा। लेकिन बाबा कहते मैं कौन हूँ कैसा हूँ ये तो नहीं जानते ना, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे, जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा ये भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सागर से ही सदगति होती है। ये भी जानते हैं कि भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेते हैं, हम आत्मा भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाले हैं, हम यहाँ के वासी नहीं है। उनको ये समझ कम होती है, वो कहेंगे ये ड्रामा है, खेल करने के लिए आए हम, लेकिन हमारा घर कौन सा वो तो नहीं जानते ना। बाबा कहते फिर भी कहते रहते हैं कि हम यहाँ के वासी नहीं है, कहाँ के वासी हैं ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, अब सीधा स्वर्ग में तो किसको जाना ही नहीं, जा ही नहीं सकते हैं, फिर आके पार्ट बजाना है। अब सीधा स्वर्ग में तो कोई को जाना ही नहीं है, कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, ये भी रॉन्ग है, आत्मा को विनाशी बना देते। अगर ज्योति ज्योत में समा जाना कहते हैं, एक तरफ कहेंगे आत्मा अविनाशी है, अखंड है, जिसको काल नहीं खा सकता है, तो गीता में भी कहा है। अगर ये कहते हैं कि ज्योति ज्योत समा जाएंगे तो इसका मतलब आत्मा को विनाशी बना देते हैं। फिर कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, ये भी रॉन्ग है, तो आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी तो हो न सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रहे, कहते ना बनी बनाई बन रहे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बाबा कहते फिर मोक्ष भी कैसे हो सकता है, जबकि कहते बनी बनाई बन रही, ये चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये कोई भी नहीं जानते, ना चक्र को जानते ना ईश्वर को जानते। कहते ना सृष्टि चक्र फिरता है, ना चक्र को जानते हैं ना ईश्वर को जानते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है ये भी तुम ही जानते हो, भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना, जबकि वो फादर है तो बाबा की टीवी तो आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी हैं, फिर भी हमको उसको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए। तो दुनिया में उनको समझाने के लिए बाबा कहते आप उनको को दो फादर, एक है लौकिक एक है पारलौकिक, और ब्राह्मणों के कितने फादर हैं? तीन हैं, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक और पारलौकिक उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, वह तो परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो कि मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, तो वह बता रहे हैं कि रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है। ज्ञान तो हो न सके, भक्ति से सदगति भी हो नहीं सकती। सदगति करने वाले बात को याद करते हैं तो जरूर वे कभी भी आकर के सदगति करेंगे। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान थे अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमसान हो रहा है। अब कहां पर कुछ होगा, उपद्रव होगा, अर्थक्वेक होगा तो क्या होता है, चोर खड़े ही रहते पहले से, अर्थक्वेक में लोग मर रहे हैं, चोर वहां पर जाएंगे, ऐसे जाएंगे जैसे कि ना वो उनको हेल्प करने जा रहे हैं। हेल्प तो क्या करना, जो भी है सारा सामान उठा करके ले आते। तो बाबा कहते हैं चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट जाते। दुनिया में क्या होता है, चलो तुम चोरी करने गया है, चोरी करने से पहले परिवार को ही सारा खत्म कर देते हैं, क्या ना क्या करते हैं, मार पीट करते हैं और फिर लूट के ले जाते हैं। कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट लेते हैं, ऐसी ऐसी तो मैं बता रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां भी है। क्या करते हैं, अभी ट्रेन में भी ऐसे ही होता है, और ट्रेन में बैठते हैं और क्या, आजकल तो क्या करते हैं, ट्रेन में बैठेंगे किसको बहुत प्यार से बिस्किट खिला देंगे, तुम ये खा लो, कोई बच्चे होते खा लेते हैं, किसी को खिला दिया बहुत प्यार से बात करेंगे, या फिर कोई ना ऐसी दवा ले जाते हैं जो सुंगा देते हैं और वो तो बेहोश हो गया और सब कुछ लूट के ले जाते हैं। तो बाबा उस समय की बात बता रहे, आजकल तो कितना ज्यादा हो चुका है। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं, ये है रावण राज्य, ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है, इसको फेरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। क्यों नाटक नहीं कहेंगे, बाबा ने खास कहा कि नाटक में अगर कोई बीमार होता है तो दूसरे को खड़ा कर देते हैं, ड्रामा में जो फिक्स हो गया ना तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं, इसमें तो ये बात हो ना सके। अभी कोई कहे नहीं तुम मेरा पार्ट ले लो, मैं तुम्हारा पार्ट ले लेता, इसके पार्ट को बदल के उसको दे दो, बाबा कहते कभी नहीं हो सकता है, जो जिसका पार्ट है वही उसको बजाना है। इसमें तो ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, समझो कोई बीमार पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है, ये अनादि बना बनाया है, और किसको तुम ड्रामा कहो तो वो मूंझ जाएंगे। बाबा हमेशा कहते थे जब शुरू में कोई आता है उसको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दो, पहले से उसको ड्रामा का ज्ञान देंगे वो समझेगा नहीं, वो मुंह जाएगा कहेगा पता नहीं क्या कहते, पहले उनको ये रियलाइज कराओ कि तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आई हो, तब वो धीरे धीरे समझेगा। तो बाबा कहते हैं और किसको तुम ड्रामा कहो तो मुंह जाएंगे, तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, कल्प बाद फिर भी यही एक्ट्रेस होंगे। कल्प बाद कौन होंगे बोलो, हम बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे रहेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, यही एक्ट्रेस होंगे, जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात, बाबा फिर बता रहे ज्ञान की बरसात सभी पर पड़ नहीं सकती, किस पर पड़ती है ज्ञान की बरसात, केवल ब्राह्मण बच्चों पे, ज्ञान की बरसात सभी पे पड़ नहीं सकती है, लेकिन ये आवाज भी सबके कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है, ये आवाज विश्व के कोने कोने तक पहुंचेगा, लेकिन उनके सब तो ज्ञान नहीं ले सकेंगे ना, परंतु ये आवाज विश्व के, ये आवाज सब तक पहुंचेगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है, तुम्हारी मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है, तुम्हारी योग से सथाई शांति हो जाती है, तुम सबको सुनाती हो कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को ही भगवान समझ लेते, अपने को भगवान बना देते हैं, लोगों की थोड़ी भावना हो जाती है, फिर जब सत्यता मालूम पड़ती है तो फिर छोड़ देते हैं, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तो तुमको कौन मानेगा, इसलिए बाप समझाते हैं कोटों में कोई निकलेंगे, तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं कि भगवान बाबा आया हुआ है, बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना, कैसे बाप को याद करो ये भी बाबा ने समझाया। अब बताओ समझा, याद करने का तरीका भी बाबा ही समझाते, कैसे बाप को याद करो ये भी बाबा ने समझाया है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं, बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं, तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने, कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे ही समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, सिर्फ मुझे याद करो, सतो प्रधान बनने का छोटा सा तरीका, सिर्फ मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने, उस बाप को तो सभी याद करते हैं, रावण राज्य, उस बाप को तो सभी याद करते ही हैं, रावण राज्य में आत्मा अपने बाप को याद करती हैं, बाप है ही अशरीरी बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा है, तुमको कहते हैं, अब बाबा का नाम क्या है शिव, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम आत्माओं को, तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव, तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परम आत्मा, उनको तो शरीर लेना ही नहीं है, लेकिन इसमें प्रवेश करते, शरीर अपना नहीं है, जन्म नहीं लेना है, इनमें प्रवेश किया है, ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे, आत्मा नाम तो तुम्हारा है, अब ब्रह्मा का तन है उसमें आते हैं। बाबा कहते आत्मा नाम तुम्हारा है, मेरा नहीं है, आत्मा नाम तुम्हारा है। फिर तुम शरीर में आते हो, ये परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता, तो सभी के दो बाप हो गए, एक है निराकारी और एक है साकारी। दुनिया में समझाने के लिए लोगों को बाबा कहते दो बाप का परिचय दो, एक है निराकारी एक है साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को ये भी समझ में नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कितने ढेर हैं, ये क्या है, ये किस प्रकार का धर्म है। अब इसको धर्म थोड़ी कहेंगे, ये तुम्हारा परिवार है। लोग भी नहीं समझते, इतने भाई बहने आते हैं और चारों ही तरफ बाबा के बच्चे ही बच्चे हैं, तो लोगों को थोड़ी मालूम पड़ता, उसमें से पता नहीं कौन सा धर्म। अभी धीरे धीरे समझने लग गए हैं। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने ढेर हैं, ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ ही नहीं सकते। ना समझते हैं ना समझ सकेंगे, जो ब्राह्मण है वही समझ सकेंगे। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना, माँ बाप कुमार कुमारी। इस परिवार में कौन है, दादा माँ बाप और भाई बहने। तो ब्राह्मण परिवार में कौन है, बाप दादा और ब्रह्मा भाई बहन है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। भक्ति मार्ग में तुम याद करती हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है, सचिव में एडॉप्ट नहीं किया जाता है। यह वहाँ तो एडॉप्शन का नाम ही नहीं, वहाँ हर एक को एक बच्चा एक बच्ची, वहाँ तो एडॉप्शन का नाम ही नहीं। यहाँ तो क्या होता है, नहीं होता, एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो एडॉप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाप और ये है बेहद का बाप, बेहद की एडॉप्शन है। ये राज ही बहुत ही गहर समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते रहे, अब बाबा बच्चों को बता रहे हैं, तुम बच्चे अच्छी तरह से पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो कि ये जो इतने सब बच्चे हैं कौन है, ये एडॉप्शन है। पहले पहले अंदर कोई आते हैं बोलो गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो ये कोई मंदिर नहीं। बाबा देखो बताओ, शुरू में आते थे कई के कहते थे गुरु का दर्शन करना है, तो उनको बताते थे यहाँ कोई गुरु नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ इसका जो बड़ा होगा उसका दर्शन करा दो। तो बाबा कहते थे उनको कह दो, एक तो यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई संस्था नहीं है जो उसका कोई हेड हो वो नहीं है, ये तो परिवार है, यहाँ भाई बहने हैं माँ बाप हैं, वो परिवार को समझे तो मिले। तो बाबा कभी ऐसे नहीं मिलते थे, बाबा कहते उनको रियलाइज कराओ कि परमात्मा हमारा पिता है, उससे हम कैसे मिले। तो बाबा कहते हैं तो बोलो गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो बोलो तुम ये कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ढेर हैं, ये सब प्रजापिता के बच्चे हैं। प्रजा भी तो तुम भी हो ना, प्रजा है प्रजा में तुम भी, उनको भी समझाओ। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। तो बाबा बताते उनको कैसे समझाना है, भगवान के लिए कहते हैं सृष्टि रची ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा हमको रचा है, हम हैं ही नई सृष्टि के और तुम हो पुरानी सृष्टि के। अब ऐसा बताएंगे तो कैसा लगेगा उनको, तो समझा करके बताना कि नई सृष्टि में कैसे जाते हैं, अब इस सृष्टि की हालत क्या हो गई है। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर, ये है पुरुषोत्तम संगम युग बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो और वह कलयुग में खड़े है, एक ही जगह कहीं कहीं जाते हैं ना, किसी देशों में होता है एक ही बॉर्डर लाइन होती है, ये कंट्री है, ये कंट्री है। तो बाबा भी बता रहे हैं तुम संगम युग पर खड़े हो और वो कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है, एक जगह पर किसी देश में एक होटल बना हुआ है, एक लाइन ऐसी है जहां पर दूसरा देश पड़ता है, एक कमरा ऐसा जो दूसरा देश पड़ता है, दोनों देश कंबाइंड है, पार्टीशन है। जैसे बाबा भी आज क्या बता रहे हैं, तुम तो जैसे कि कहां बैठे हो संगम युग में, जैसे कि पार्टीशन पड़ गए, एक ही घर के अंदर एक कलयुगी है और एक संगम युगी है। आजकल तो देखो कितने पार्टीशन है, हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, हम अपने धर्म को, अपने हम जींस को सुखी रखेंगे, इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से ये चीज बाहर ना जाए। इतना पार्टीशन है, छोटी छोटी चीज के लिए, घरों में भी है, परिवारों में भी है, समाज के अंदर भी है, धर्मों के अंदर भी हो गया, स्टेट्स में भी है, ये चीज यहाँ से वहां ना जाए। तो बाबा कहती हैं हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिसको सुखी रखेंगे, इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से ये चीज बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था, राजा ही सब स्टेट्स को देखता था, अभी तो देखो क्या छोटी छोटी बात पे कितनी बातें आती हैं। राजा को ही माए बाप अन्नदाता कहते थे, अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं, ये सब है दुख का मोल। कहीं देखो तो बरसात पड़ रही है, कहीं पर बर्फ पड़ रही है, कहीं पर अर्थक्वेक हो रहा है, अचानक ही कितने लोग चले जाते, मर जाते हैं ना। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो हम सब आपस में भाई भाई, अब ये ध्यान से सुनना बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं। तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से खीरखंड होकर रहे, खीरखंड समझते ना, खीर दूध को दूध में चीनी मिलाते हैं तो कितना मीठा होता है, इसलिए हमें आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, आपस में खीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, शेर बकरी के लिए कहते ना वो दुश्मन होते हैं, लेकिन राम राज्य में शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वह भी इकट्ठे पानी पीते, वहां जानवर भी इतने प्यार से रहते हैं, कोई किसको मार के नहीं खाता है, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं जब जानवर भी ऐसे रहते हैं तो तुम बच्चों को कैसे रहना चाहिए। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गवाया है, लिया है गवाया है और फिर लेंगे, अर्थात रावण पर तुम जीत पाते हो फिर हारते हो। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचे से ऊंचा भगवान कहा जाता है, सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सबको सुख का रास्ता बता रहे हैं, तुम बच्चे आपस में क्या होना चाहिए, खीर सागर होना है। तो बाबा कहते हैं खीर खंड होना चाहिए, दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, लून कहते नमक को लून, सिंधी में नमक को लून कहते। तो बाबा कहते सभी क्या है, लून पानी है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते, जरा सी बात होगी हंगामा करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। जिसका पता भी नहीं होगा तो भी करते ही रहते हैं। तुम ईश्वरीय औलाद हो तो खीर खंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। आज बाबा पक्का करा रहे हैं, देवताएं तो है ही हैं, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ ईश्वरीय संतान है तो हमें क्या करना है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, ये दिल में आना चाहिए। हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वह दैवी गुण है। बाबा के कार्य में मददगार हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो बाबा की अपनी चेकिंग करनी है कि हमारे में वह दैवी गुण है। आसी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा कहला न सके। कुछ न कुछ करते रहेंगे, किसने के बारे सोचते रहेंगे, किसके नेगेटिव बातों को सोचते रहेंगे, तो बाबा कहते ये भी तो आश्री अवगुण है ना। तो बाबा कहते हैं आश्री अवगुण है तो वह बाप का बच्चा कहला न सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए। भक्ति में तो कहेंगे उस गुरु के लिए, यहाँ बाबा कहते हैं कि बाबा का बन करके भी कुछ भी ऐसा कर्म करेंगे तो फिर तो सदगति तो हो ही नहीं सकती है ना। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए। वह कलयुगी गुरु वह फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं सपूत बच्चे वह है। कौन है बाबा बता रहे हैं, सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते। दूसरा खीर खंड हो रहते, खीर खंड में आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, खीर खंड होकर रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे खीर खंड रहो, मीन्स आपस में प्यार से रहो, नून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। छोटी छोटी बात को लेकर के मैं तो शुरू कर देते ना, तो बाबा कहते लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको तो यहाँ खीर खंड बनना है, आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना, ईश्वर मोस्ट लवली हैं, तब तो सभी उनको याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते। आज बाबा कितना ध्यान खिंचवा रहे हैं, आपस में प्यार नहीं होगा तो बाबा की इज्जत जाती है ना, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसे पा सकेंगे? आपस में लड़ेंगे फिर पद भी नहीं पा सकेंगे ना। बाप समझाते हैं आपस में खीर खंड होकर रहो, नून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? बाबा ऐसे प्यार से समझा रहे हैं। बाबा कहते देखो ऊंच पद पाना है तो क्या करेंगे, अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? देही अभिमान में आने से फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खेतपीट ना हो। देही अभिमान से लड़ाई झगड़ा, देही अभिमानी हो तो कुछ भी खेतपीट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मों को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब है तुमको भी बनना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पढ़कर बाप से ऊंच पद पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वह राजा रानी बनते। अब राजा रानी कौन बनेंगे? जो बहुतों का कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां तो जाकर बनेंगे, दास दासी बनना तो बनेंगे, लेकिन राजा रानी कौन बनेंगे उसकी कंडीशन बाबा ने क्या बताया कि जो बहुतों का कल्याण करेंगे। समझ तो सकते हो ना कौन कौन क्या बनेंगे, पढ़ने वाले भी खुद समझ सकते हैं कि इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, आज बाबा पक्का कराए, ईश्वर के बच्चे बहुत मोस्ट लवली होने चाहिए। जो कोई बाबा बताते हैं ईश्वर के बच्चे हैं उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए, खीर खंडो के रहना चाहिए, मोस्ट लवली होना चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। कौन लगेंगे? जो खीर खंडो करके रहेंगे, प्यार से चलेंगे, वो बाबा की भी रेल पर चढ़ेंगे और बाबा को मीठे भी वही लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को, फिर पर दूसरे को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीर खंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा। कई के ऐसे बाबा के बच्चे परिवार के परिवार हम देखते, कई ब्राह्मणों के कितने परिवार हैं, सब के सब ज्ञान में चलते हैं, बहुत प्यार से घर के अंदर व योग का वातावरण को देखते हैं, तो बाहर वाले आते बहुत खुश होते हो तो कहते जैसे कि यहाँ पर स्वर्ग लगा हुआ है। कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा हुआ है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे, बाबा साकार बाबा बताते हैं कि अज्ञान काल में भी ऐसे घर देखे हैं, 6-7 बच्चे शादी किए हुए हैं, सब इकट्ठे रहते। बाबा तो जाते थे ना, सब कई कई स्थानों पर जाते थे, बाबा हमेशा कहते थे देखो उनको ज्ञान भी नहीं है, पूरा का पूरा परिवार इकट्ठे रहते हैं, बहुत अच्छी तरह मिलके रहते हैं, सब उठ करके भक्ति करते हैं, सब एकदम संगठन में रहते हैं। आज भी ऐसे कई कई परिवार हैं जो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, कोई भी तनाव नहीं कुछ नहीं है, मोस्टली तो चारों तरफ लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे परिवार भी हैं। तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं, 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती। ऐसा परिवार भी है, अभी भी है, तो लेकिन जैसे वो लोग भी कर सकते हैं तो बाबा कहते तुम तो ईश्वर के बच्चे हो तो तुम भी तो ऐसे कर सकते हो ना, घर में शांति लगी रहती है, ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगला इकट्ठे तो रह नहीं सकते हैं, तुमको तो हंस बनना है, नून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाबा पक्का कर, नून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो, अगर खीर खंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजाएं खाएंगे। बाबा हर बात को स्पष्ट कर रहे हैं, अगर तुम खीर खंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। अब बाबा ने हिसाब बिता दिया, और यहाँ भी होगा तो अंदर कितना हालत खराब होती है ना, तो बाबा कहते फिर तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हमने क्या क्या किया, ऐसे किया, फिर क्या पद पाएंगे, तो फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और धारणा के लिए मुख्य सार और मुरली के बाद गीता बहन आप आना स्टेज पे, थोड़ा समाचार सुनाना वहाँ का। अच्छा, अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें फिर से पढ़ती हूँ, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और हुलास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। बाबा के बने, बाबा ने वरदान दिए और बाबा कहते हैं क्या करो, बाप द्वारा जन्म से ही जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और हुलास भी अचल होना चाहिए। अचल की बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते हो। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न समाप्त हो जाए। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना। सेवा भी अलग अलग होती है, स्थूल सेवा है, सूक्ष्म सेवा है और कारो हाथ से कई काम करने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, उनका देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता ना हो। कई बार कोई अच्छी सच्ची बात को बताने के लिए चिल्लाते हैं जोर जोर से चिल्लाते हैं, उसमें सभ्यता खत्म हो जाती है। जो सच्ची बात कहनी है ना उसको भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। प्यार से बताओ, क्लियर करके बताओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो ये भी राइट नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में लॉस एंजलिस की गीता बहन बैठी हैं, इनके पास लॉस एंजलिस में जो भी हुआ तो हम संक्षिप्त में सुनेंगे, और योग के बाद डबल विदेशी भाई बहनों को आज सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा जब तक गीता बहन आए। लेकिन एक बहुत बात सुना रहे हैं समाचार, आप सबको मालूम हो हैदराबाद मेहंदी पट्टनम सेवा केंद्र की संचालिका शीला बहन बहुत पुरानी है, बहुत बार मधुबन आती रही है, सब भाई बहने उसको अच्छी तरह से जानते हैं। हैदराबाद में उसने वीआईपी सेवा की है, बहुत सेवाएं की हैं, और आजकल वो हैदराबाद के मेहंदी पट्टनम सेंटर के इंचार्ज थी, और 6 मार्च को कल शाम को 4:40 पर उन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद ली। छोटी आयु 50 वर्ष की है, 34 वर्ष से तो बाबा के यज्ञ में समर्पित छोटी ही आयु में आ गई, और इन्होंने बहुत सेंटर की हैं। कुलदीप बहन के साथ हैदराबाद शांति सभा में कुलदीप बहन की राइट हैंड बन के रही है। लेकिन क्या हुआ कि 4 मास पहले उनको बीमारी का मालूम पड़ा कि लीवर में कैंसर था और लास्ट स्टेज पर था। तो जब समाचार मिला उनकी ट्रीटमेंट भी रही, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कराई, लेकिन उसको और सेवा करनी होगी, तो कल उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग करके बाबा की गोदी में गई हैं। और बाद में हम खास ऐसी विशेष आत्मा के निमित्त योग में बैठ के श्रद्धांजलि देंगे। उससे पहले हमारे बीच में गीता बहन लॉस एंजलिस की, जो कि आप सबने पहले भी अखबारों द्वारा टीवी द्वारा समाचार सुने थे कि अमेरिका में किस प्रकार से इस साल बहुत विशाल रूप से आग का भयंकर रूप देखने को आया। हर साल तो लगती है लेकिन ऐसा भयंकर रूप नहीं होता है जो इस साल हुआ, और सेंटर और बाबा के बच्चे कैसे सेफ रहे वो आपको समाचार सुनाएंगी। गीता बहन बोले,
ओम शांति। जनवरी मंथ तपस्या का मंथ था, बाबा के सभी बच्चे खास तपस्या का प्रोग्राम्स बनाया हुआ था, तो इसमें ही बुद्धि थी, और उस समय बाबा ने खास अंडरलाइन करा था कि कम से कम 4 घंटे का योग जरूर करना, और प्रकृति ने भी उस समय सुन लिया कि मे भी हम अपना वंडर दिखावे। अचानक जनवरी 7 को बहुत सारी विंड माना पवन बहुत जोर जोर से आया था, 3 दिन से कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता था, और 185 माइल्स पर आवर की वो विंड थी, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक वायर होता था तो उनसे स्पार्क निकला, और आजू बाजू जो माउंटेन्स थे उनके पर जाके फायर शुरू हुई। कई सालों से वहां बारिश नहीं हुई थी, तो ज्यादा तक सब माउंटेन्स पूरी पहाड़िया बहुत सूखी हुई थी, तो उसमें शुरुआत हुई, तो साथ साथ विंड भी थी और आग भी लगी। तो वहां की जो भी घर है वो सभी लकड़ी की होती है, क्योंकि अर्थवेक भी वहां होता है, तो उसके कारण लकड़ी की घर होते हैं, तो बहुत आग के आग ने अपना स्वरूप जोर से ले लिया था। और जैसे जैसे विंड बढ़ती जा रही थी ऐसे ऐसे वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, और ज्यादा तक जो भी ज्यादा धनवान थे वो उसी पहाड़ी पर रहते थे, और बाबा के भी कई बच्चे थे जो वो पहाड़ी पर रहते थे, पर जिसने तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से बाबा की सेवा की, उन सभी बच्चों का घर बच गया। जैसे आग जाती है और फिर वहां ही रुक जाती है, घर पूरा बच गया। आग जैसे ऐसे पसती पूरा घर जला जला के जाती है और बाबा के बच्चे के घर के पास आके जैसे बच जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को आज की मुरली में भी बाबा ने कितनी अच्छी सावधानी दी, अगर हम बच्चे प्रैक्टिकल में करते जाएंगे तो बहुत सारी बातों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो उसी समय बाबा के घर तक टीवी नहीं है, समाचार भी नहीं आता था, पर अचानक बहुत सारा बादल जैसे एकदम आता गया, तो हमने सोचा कि बारिश होने वाली होंगी। तो फिर ऐसे ही समाचार आया कि बहुत सारी आग लगी है। तो ड्रामा का वंदर भी ऐसे था कि एक बाजू सागर है, दूसरी बाजू पहाड़ी है और आग लग रही है। वो सागर का पानी भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्टी होती है, तो उसके कारण जमीन भी बिगड़ जाती है, पर अंत में वो भी यूज करना पड़ा। और पूरे सदर्न कैलिफोर्निया जहां आग लगी, वो पूरा सदर्न कैलिफोर्निया कि एक से एक के बाद एक के बाद चेक सैनडियागो मेक्सिको की बॉर्डर तक पहुंच गया था। और इतने लोग प्लेन द्वारा भी केमिकल्स डाले जाते थे तो उसकी पूरा वातावरण एकदम अशुद्ध भी नहीं ले सके। घर कोई भी घर की खिड़कियां भी नहीं खोल सकते थे, दरवाजा भी नहीं खोल सकते थे और घर में भी मास्क पहनना पड़ता था। पर उसी समय तपस्या का मन था तो सभी अपने स्वरूप में ज्यादा तक रहे हुए थे। दबी रही धूल में समय ये भी हो रहा था, अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके फायर ब्रिगेड का कॉस्ट्यूम पहन के वो भी अपना जैसे अपना काम करने जा रहे थे, कोई पुलिस का ड्रेस पहन के अपना काम करने जा रहे थे, पर वो भी बहुत सारे पकड़ गए। करीब 17,000 फायर ब्रिगेड वहां आग बुझाने के लिए आए थे। तो हमने सोचा कि कैसे हम उनकी भी सेवा करें। बहुत सारी रात दिन कंट्रोल में भी नहीं आ सकती थी, तो उनको भी जैसे पानी है, कोई ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई लाइक जो भी ड्राई पैकेट वाला आता है तो उसको हम जाके ले। आप लोग हमारी जैसे कदर करते हो। और बाबा के बच्चों को बहुत सारी बातें अंडरलाइन कराया क्योंकि सब जगह पे आग लगी थी, तो बस न चली डर तो लगता था कि क्या होगा, पर बाबा ने हम बच्चों की एक टाइटल दिया तो बार बार बाबा के बच्चों को अंडरलाइन कराता था कि हम कौन है। हम शिव शक्ति, डायरेक्ट परमात्मा की शक्ति है। और बाबा कहता है पांडव माना बहादुर सेना, तो हम लोग को कैसे अपने आप को एवर रेडी रहना है, हमारे पास कौन सा वेपन है जिस कारण जो भी परिस्थिति आती है उसको हम उपरांत जा सकते हैं। तो हमारे पास वो शक्ति है बाबा ने कहा ना योग बल, तो जितने जितने हम योग बल अपने पास खाते में जमा करते जाएंगे तो कोई प्रकार का डर भी नहीं रहेगा, जो भी कोई परिस्थिति आती है उसका सामना करने का भी मौका रहा। तो मैं अपने आप से बहुत ही बाबा के बच्चे का हर एक की स्थिति इतनी अच्छी थी कि कोई भी कभी भी आग के बारे में नहीं बोलते थे, बस बाबा की ही जैसे याद में और बाबा की ही बात में रहते थे। जब भी भारत के ज्यादा तक समाचार था कि बहन जी क्या हुआ क्या हुआ, तो हमने यही कहा कि बस बाबा के बच्चे सब सेफ है और सभी तपस्या कर रहे हैं। और मीडिया वालों का काम तो जरा और ही ज्यादा दिखाने का होता है, जहां बताया है कि हॉलीवुड में बहुत सारी आग लगी, तो बाबा का घर भी हॉलीवुड में ही है, बिल्कुल वहां आग नहीं लगी थी, पर आंख ज्यादा तक बहुत सारी पहाड़ियों पर लगी थी, जिसके कारण पूरे लॉस एंजलिस में, क्योंकि लॉस एंजलिस बहुत बड़ा है, मोर देन 14 मिलियन पॉपुलेशन है, और उनके बाद की जो बॉर्डर्स आती है मेक्सिको तक पहुंच गया था। बाबा के कोई भी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, और पूरी बाबा के जो भी सेंटर्स अलग अलग स्थानों से पूरी दुनिया से इतना अच्छा समाचार आ रहा था कि हम भी बाबा का शकास्त दे रहे हैं, और वो भी तपस्या में थे, तो सभी के सहयोग से फिर आग भी थोड़ा कंट्रोल में आया, पर उनके बाद बहुत सारी बारिश आई, तो बारिश के कारण मड स्लाइडिंग शुरू हुआ। तो ये तीन प्रकार की प्रकृति ने अभी अपना स्वरूप बताया। अभी तो जब पांचवी प्रकृति साथ में होगा तो क्या होगा, तो शॉर्ट में कि बाबा के सभी बच्चे बहुत ही, मैं तो समझती हूँ कि पावरफुल है, और बाबा भी रक्षा करता है, क्योंकि सभी ने विदेश में खास करके मैंने देखा कि बहुत वैराग्य का अनुभव रहा है, किसी को कोई प्रकार की जैसे आसक्ति नहीं लगती, ऐसे कि कैसे मैं बाबा की सेवा में मदद करूं, मधुबन को मदद करूं, तो ये बहुत ही हर आत्मा में बहुत ही अच्छी तरह से अनुभूति है। ओम शांति।
बहुत सुंदर है, बाबा अपने बच्चों को कितना सेफ रखता है, जितना बाबा की सेवा में कार्य में लगाते हैं उतना ही बाप की मदद मिलती है। बाबा ने तो हम सबको एक इंस्ट्रूमेंट दे ही दिया है, सेफ्टी का साधन बाबा की याद, जिससे सब कार्य सहज हो जाता है। अभी हम सभी खास हैदराबाद की शीला बहन के निमित्त योग में श्रद्धांजलि देंगे। आज उनका 2 बजे अंतिम विदाई दी जाएगी। कल शाम को उनके भौतिक शरीर को हैदराबाद शांति सभा में रखा था, बहुत से भाई बहने वहाँ पहुंचे भी हैं, क्योंकि बहुत सेवाएं की हैं। अब उसके निमित्त योग में बैठकर श्रद्धांजलि देंगे। After that, all the double foreign sisters and brothers will stay back. Today's program will be announced. योग के बाद सभी विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम अनाउंस किया जाएगा। ओम शांति।